ओम शांति। तो आज हमारा टॉपिक है ब्राह्मण जीवन में श्रीमत का महत्व। तो अब तक हम अपने परिवार में जो बड़े कहते थे उसकी मत पर चलते थे, जिसको हम दूसरे शब्द में परमत कहें। आजकल क्या है कि कई लोग स्पेशली जवान इंडिपेंडेंट बन गए, वो परिवार की बातें नहीं सुनेंगे, अपने मन में जो आएगा वो करेंगे। मन मत चाहे फिर ज्ञान में आने के बाद भी अपने मन में जो आते हैं वो बातें करते हैं। बाबा तो कहते हैं परंतु ये संभव नहीं है, ये मुश्किल है, या इसके कारण हम नहीं कर पाते हैं आदि आदि बहाना करके मन मत पर चलेंगे। या राय लेनी होगी तो किसी के भी पास जाकर राय लेंगे, चाहे परिवार के से लेंगे, चाहे पड़ोसी संबंधियों से लेंगे, किनों से भी मित्र संबंधी से लेंगे, पर मत। श्रीमत है बाबा की मत। अभी श्रीमत हर एक के लिए एक है। जैसे आज बाबा कहते थे कई देशों से आए हैं, तो बाबा के बच्चे आज 140 से ज्यादा देशों में हैं। तो हर एक का, जैसे अभी हमारा एक धर्म, एक मत, एक प्रकार का जीवन हम जीते हैं। पहले हरेक का रस्म रवाज अलग होता था। जैसे हम देखेंगे अभी भी इंडिया में देखो तो जितने स्टेट में जाओ वहां का देश का, उस स्टेट का वेशभूषा अलग। महाराष्ट्र की मराठी लोग है अलग कपड़े पहनेंगे, राजस्थानी अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आसाम के लोग, उड़ीसा के, हर एक का जैसे स्टेट का कॉस्ट्यूम, देश का वेश जैसे कि अलग अलग हो गया, भाषा अलग होंगी, खान पान में फर्क हो जाता है। तो ये है रस्म रवाज। सिख लोग है तो वो भी भाई लोग है, केश रखते हैं, कंगन पहनते हैं, कृपाण रखते हैं। तो ये जैसे कि रस्म रवाज हो गए। तो ये सब की अलग अलग थी, एक देश में भी कई प्रकार की। भिन्न देशों में तो नेचुरली भिन्न भिन्न हो ही जाती है। तो रस्म रवाज अलग, मर्यादाएं मैं समझती हूँ सबकी एक होनी चाहिए, कि ड्रेस हमारा ऐसा हो जो अंग अंग ढक जाए, ये मर्यादा। और बोलने में धीरे से बोलना है, प्रेम से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, एक दो को रिस्पेक्ट देना है, ये मर्यादाएं हो गई, जिससे हम, जिसको मैनर्स भी कहें, तो ये हमको मर्यादाएं भी सिखाते हैं बाबा। और श्रीमत जो बाबा एक एक कदम पर कैसे चलना है और जीवन में क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये बातें बताते हैं। तो अब हम देखें कि बाबा ने हमें क्या क्या श्रीमत दी है। पहली श्रीमत है अमृत वेला उठो। वैसे तो हम योग लगाते हैं और सारा दिन लगाते हैं, परंतु अमृत वेले का महत्व अपना है, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत पावरफुल और साइलेंस होता है और संगठित रूप में जब योग लगाते हैं तो उसका संगठन का भी लाभ मिलता है। तो समझो भल अभी आप अपने घर में लगाते होंगे, परंतु जो भी ब्राह्मण है जहां भी है, चाहे अपने भी घर में लगाते हैं, पर उसी टाइम लगाते हैं और बेस्ट टाइम का फायदा लेते हैं। तो पहली श्रीमत है अमृत वेले उठकर योग करो, और यदि सेंटरों पर है तो संगठित रूप में एक ही कमरे में योग करो। और उसी समय भी जो हमारी रस्म है, लाल लाइट चलाना, म्यूजिक चलाना, अगरबत्ती जलाना, ये जैसे उस समय की रस्म हो गई, रिवाज हो गया। दूसरा बाबा कहते हैं मुरली रोज सुनो। शरीर को भोजन देने के पहले मुरली जरूर सुनो, पढ़ो, उसका मनन मंथन करो सारा दिन, और मन को ये शुभ विचारों में बिजी रखो। तो मुरली जैसे हमारे आत्मा का, मन बुद्धि का भोजन है, वो पहले करो, पीछे ब्रेकफास्ट करो। ये दूसरी श्रीमत है, क्योंकि फिर हमको सारे दिन के लिए मनन मंथन करने के लिए पॉइंट्स मिल जाती हैं। तीसरा है कर्म करते करते योग लगाओ, क्योंकि हाथ काम में दो और दिल यार को दो, बाबा को दो, क्योंकि कार्य करते करते भी स्थूल कार्य है तो मन तो बाबा में लगा सकते हैं और ये फायदा भी ले सकते हैं, डबल काम हो जाता है, हमारा भौतिक कार्य भी हो जाता है तो बाबा की याद से कमाई भी हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्मयोगी बनो, सहज योगी बनो, निरंतर योगी बनो। हमें सहज योग सिखा दिया बाबा ने, ऐसे नहीं कि हाँ हमको योगी बैठक में ही बैठना है, या बैठक में बैठ सके तो अच्छा ही है, परंतु चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, कार्य करते योग लगा सकते हैं सहज। उसमें हठ योग करने की दरकार नहीं है, शरीर को मोड़ने की दरकार नहीं है, और सिर्फ मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। फिर सात्विक भोजन, क्योंकि वेजिटेरियन तो है ही, खाना है ही, परंतु वेजिटेरियन में भी सात्विक, प्याज लहसुन नहीं, मसाला नहीं ज्यादा, गरम मसाला या लाल मिर्ची वगैरह नहीं, और अचार वगैरह नहीं, तो ये समझो सात्विक भोजन। और देखा गया है कि आज भारत तो क्या, देश विदेश में भी जो भी ब्राह्मण है वो वेजिटेरियन सात्विक भोजन खाते हैं और खुद का पकाया हुआ। स्वयं पाक किया, ब्राह्मणों ने अपने हाथ से पकाया हुआ, औरों के हाथ से नहीं। तो इसलिए ये भोजन भी चाहे कोई भी है, चाहे अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, परंतु ब्राह्मण के हाथ का पकाया हुआ तो ये सात्विक भोजन और खाना है। और यूजुअली हम टाइम फिक्स रखते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, रात को डिनर, तीन टाइम भोजन करना। फिर हमारे संकल्प, बोल चाल, कर्म में हमको ध्यान रखना है कि हम किसी को दुख नहीं देते हैं, न दुख लेते हैं, क्योंकि विकार के वश हो जाते हैं। देह अभिमान है तो विकार के वश हो गए, विकार के वश हो गए तो किसी न किसी को दुख देंगे और दुख लेंगे भी। इसलिए बाबा ने कहा है अपने ऊपर ध्यान रखो कि कोई भी विकर्म ना हो, पाप कर्म ना हो, मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ कर्मणा नहीं। क्योंकि लौकिक में तो कहते थे चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, किसी को मारो पीटो नहीं, खून नहीं करो, ये पाप कर्म है। लेकिन अभी बाबा कहते गुस्सा करना भी पाप है, लोभ वश खाना और किसी को बताना नहीं, जो जो निमित्त है उसको बताए बिगर फ्रिज से उठा लेना या किचन से खा लेना, ये भी चोरी हो गई। तो बाबा हमारे पर बहुत सूक्ष्म ध्यान देने की बात करते हैं, दुख देना नहीं है पर लेना भी नहीं है, किसी का नाजुक स्वभाव होता है। तो यदि किसी ने जरा भी कुछ बोला दुख ले लेते हैं, किसी ने प्यार से बुलाया नहीं दुख ले लेते हैं। तो इसलिए देखना है कि कोई मान देवे, अपमान करे, ग्लानी करे, निंदा करे, परंतु दुख नहीं लेना है। बाबा ने कह दिया हियर नो इविल, तो कोई इविल बोलते हैं दुख ना लो, सुख दो और सुख लो, जहां तक हो सके मनसा वाचा कर्मणा, सबको हमें सुख देना है। उनको मदद करनी है, अपना समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है। आजकल उस पर बाबा बहुत विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, संकल्प व्यर्थ न जाए, संकल्प समर्थ पॉजिटिव हो, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना हो। कोई क्या भी करे कोई हमारा दुश्मन नहीं। बाबा कहते हैं ग्लानी करने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो कि उसने हमारी सहन शक्ति बढ़ा दी। तो इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे और अपने संकल्प, बोल भी हमारे कम बोलना, धीरे बोलना, सोच समझ कर बोलना, ज्ञान युक्त बातचीत, इधर उधर की गपशप नहीं, उसमें हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय को सार्थक करना है। समय, संकल्प, बोल और बाबा ने जो खजाने दिए हैं उसकी वैल्यू समझनी है, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत वैल्यूएबल खजाने दिए हैं। ज्ञान भी है, बाबा कहते हैं पात्र देख कर दियो। यदि किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो उसको जबरदस्ती ज्ञान नहीं दो। कई बार क्या होता है कि हमने थोड़ा परिवार से थोड़ा मोह होता है, हम समझते हैं परिवार वाले ज्ञान में आए, इसलिए जबरदस्ती ज्ञान देते हैं। माताएं घर में जाकर कहेंगी, आज तो हमको दीदी ने ये सुनाया ये सुनाया ये सुनाया, बहुत उमंग उल्लास से जो क्लास में बात चली वो सुनाएंगी। और पति को इंटरेस्ट नहीं है, कहेंगे रखो तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, तुम्हारे पास हमको नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, फालतू गया ज्ञान। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कि मिच्छू में भी अक्कल होती है, नरम चीज देखकर काटता है। तो इसी रीत से हमें भी देखना है कि किसका इंटरेस्ट करनी है। सेवा करनी अच्छी है, परंतु आजकल बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ सेवा है मनसा। किसी को भी मनसा योगदान दो, शुभ भावना उनों के लिए रखो, शुभकामना रखो और पॉजिटिव रहो कि एक न एक दिन उसकी बुद्धि को ताला खुलेगा। बाबा से प्रार्थना नहीं करनी है, बाबा कहते हैं बेगर नहीं बनना है, बाबा से मांगना नहीं है कि बाबा अभी इसके बुद्धि का ताला खोलो, परंतु भावना रखनी है कि एक न एक दिन उसका बुद्धि का ताला खुल जाएगा। और रात को चार्ट लिखना है कि सारे दिन में हमें क्या क्या किया, कितनी योग की कमाई की, हमारा अमृत वेला पावरफुल था, मीडियम था या साधारण था या योग ना के बराबर था। क्योंकि योग की भी तो अवस्थाएं होती हैं, तो ये देखना है कि हमारी योग की अवस्था धीरे धीरे ऊपर जाती है। शुरू में तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान का मनन मंथन करते हैं, जो मुरली सुनी जो पढ़ा उनका मनन मंथन किया। दूसरी स्टेज पर बाबा से रूहान करते हैं, जैसे मंथन में कहते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है आदि आदि मनन मंथन करते हैं। जब रूहान करते हैं तो कहेंगे बाबा आप तो प्यार के सागर हो, आप तो दिलवाला हो, हमारा दिल लेते हो, आप तो लिबरेटर हो, हमको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो। तो जैसे बाबा से चिकचैट करते हैं। फिर है सूक्ष्म फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन का सैर करना कि ये शरीर का भान छोड़ के शरीर को लाइट का रूप देखो, फरिश्ते रूप में, और सूक्ष्म वतन में जहाँ ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा बाबा भी लाइट के रूप में बैठे हैं वहाँ पहुँच जाओ। तो वहाँ हलचल होती है, हिलना घुलना होता है, आवाज से परे, और फाइनल स्टेज है निराकारी स्टेज या बीज रूप। तो निराकार बनकर निराकार की याद में खो जाना। तो धीरे धीरे अभ्यास करना है कि हमारी स्टेज ऊंची होती जाए, और वो भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम मन को ऑर्डर करें, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, तो वो स्टेज एक सेकंड में आ जाए। जब हम कहें अभी हमको ज्ञान का मनन मंथन नहीं करना है, सूक्ष्म फरिश्ता बनना है, तो बन जाएं। और जब कहें अभी हमको तो बीज बन के बीज की याद में खो जाना है, तो खो जाएं। तो इसलिए योग का इतना पक्का हमारा अभ्यास हो, और चेक करना है कि हमारा आज हमने पुण्य का खाता कितना बनाया, कितनों को सुख दिया, पाप का खाता कैसे कितना बना, आज किसी को हमने दुख दिया, क्यों दुख दिया, क्रोध के वश दिया, लोभ के वश दिया, अहम के वश दिया। तो अपने ऊपर अटेंशन रखना है, और दूसरे दिन के लिए अपने आप को बताना है कि नहीं, अभी हमको ऐसा नहीं करना है। हमको ध्यान रखना है कि अहम अहम के वश, गुस्से के वश, किसी को दुख ना देवें, किसी का इंसल्ट ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें। तो इस रीति से अपना चार्ट देखना है। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा संस्कार परिवर्तन होगा। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है कि हम मनुष्य से देवता बने, और मनुष्य से देवता बनने की ये जो ऊंची स्टेज धारण करनी है, इसके लिए ये श्रीमत का पालन जरूर करना है। बल करके कई बार कईयों को ऐसे लगेंगे कि बाबा हमको बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहले तो ज्ञान के पहले मन में जो आया कर लेते थे, मन में जब आया खाया, मन में जब आया सोया। अभी हमारा नियम बनाया है बाबा ने, 10 बजे के पहले सो जाओ, 4 बजे के पहले उठ जाओ। हाँ, होटल में नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, मूवी में नहीं जाना है, घर में भी कोई टेलीविजन देखता है तो वो नहीं देखना है। तो कई समझते हैं कि ये बाबा हमको कड़े नियम देते हैं, श्रीमत थोड़ा उनको भारी लगता है। परंतु क्या है कि ये जो श्रीमत है या जो हमें मना की जाती है, उसमें हमारा फायदा, बाबा को याद करने से बाबा को फायदा नहीं है। क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मामे कम याद करो, मन मना भव, मध्यादि भव, उसमें बाबा को फायदा नहीं है, फायदा हमको है। तो इसलिए जब हम समझेंगे कि हम जो करते हैं उसमें हमारा कल्याण है, हमारा फायदा है, हमारी उन्नति है, तो क्या होगा, भारी नहीं लगेगा, हम खुशी खुशी से करेंगे। तो जो बात हम खुशी खुशी से करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम हल्के रहते हैं। तो ये देखना है कि श्रीमद् पालन करने में हम भारी ना हो जाएं, कि ये भी करना है, ये भी नहीं करना है, ये क्या है। क्योंकि हमारे मित्र संबंधी तो बोलेंगे कि ये क्या तुम्हारी जीवन है। हंसेंगे भी सही, हंसी भी उड़ाएंगे। खास विदेश में तो बहुत हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मचर्य, शादी करके ब्रह्मचर्य का पालन करना, कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चलो साइकियाट्रिस्ट के पास। पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी एक बड़ी श्रीमत है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो क्या है कि शादीशुदा है तो बाबा नहीं कहते हैं घर बार छोड़ के सन्यासियों के तरह चले जाओ, घर बार में रहो, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन, हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति बदल जाए। क्योंकि जितना देही अभिमानी रहेंगे हमारी भाई भाई की दृष्टि हो जाएंगी, तो पति पत्नी का भाव नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष का भान नहीं रहेगा, परंतु हम आत्मा भाई भाई एक बाप के बच्चे, तो भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएंगी और साथ में रहकर भी पवित्र रहना सहज हो जाएगा। तो इसलिए लोग भले हंसी उड़ाए, क्योंकि जवान लोग है, जब शराब नहीं पीते, पार्टियों में नहीं जाते, तो नेचुरली है कि उसके फ्रेंड सर्कल जो पहले थे वो हंसी उड़ाते हैं कि तुम सन्यासी हो गया क्या, ब्रह्मा कुमारियों ने तुम्हें सन्यासी बना दिया। तो इसलिए हंसी उड़ाते हैं, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी है। हमारे दिल से हम जो कुछ समझते हैं कि ये जरूरी है, उसका पालन भी जरूरी है, तो पालन भी हमको जरूर करना है। और इसमें बाधाएं तो बहुत आती है, विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने में यदि एक साथी है ज्ञान में नहीं है तो बहुत विरोध होता है। उसमें भी ज्ञान में हम देखते हैं माताएं ज्यादा है, पुरुष कम है, पत्नी ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं है, तो क्या है, अत्याचार होते हैं, क्रोध करता है पति, मारपीट भी करता है, बोलता भी है बहुत, घर से बाहर भी निकाल देता है, परंतु माताएं जो पक्की है वो क्या है, सहन करके भी श्रीमत का पालन करती हैं। और हमारे पास एक माता थी, उसको पति ने 3-4 बार घर से निकाल दिया। एक बार तो रात को, क्योंकि सोते हैं तो साड़ी उतार के सोते हैं, तो साड़ी उतार करके बैठी थी, उसको उसी समय रात को घर से निकाल दिया कि चाहो चली जाओ, मेरी इच्छा पूरी नहीं करती है तो घर में नहीं रहो। तो बिचारी रात को सारा छत पर बैठी रही, और जब सवेरे उसने दरवाजा खोला, क्योंकि उन दिनों में सवेरे दूध वाला या न्यूज़पेपर वाला आता था, तो पति को दरवाजा खोलना पड़ा, उस समय फिर घर में घुसी। तो क्या है कि फिर भी उसने कई बार माँ के घर में चली गई, फिर वापस आई, तो अंत में क्या हुआ, पति मेरे साथ भी झगड़ने आया कि कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ, संस्कृत बहुत पढ़ा था, कौन से शास्त्र में लिखा है, टेबल पर हाथ पछाड़ कर, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ कि पवित्र रहना है, आप हमारी युगल को यहाँ आने नहीं दो। मैंने कहा भाई ये तो मंदिर है, मंदिर में पुजारी थोड़ी कहेगा कि भगत लोग ना आवे, बाकी आपको अपनी युगल को नहीं आने देना है तो आप घर में रोको। आखिर अभी वो खुद भी ज्ञान में आ गया। बच्चे तो ज्ञान में थे ही, परंतु पति भी ज्ञान में आ गया। तो क्या है कि जैसे देखा गया है कि जो पक्के रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, घर वालों को छोड़ देना पड़ता है। खुद चले ना चले, परंतु उनको चलने देते हैं। और कई बार जैसे शुरू में देखा कि कईयों को घर बार छोड़ना पड़ा, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन जरूर किया। आजकल तो मैं समझती हूँ बहुत थोड़े हैं जिन्हों को इतना अत्याचार सहन करना पड़ा। आप में से कईयों कितनों को अत्याचार सहन करने पड़े, जरा हाथ उठाना। बस इस दो में से दो चार, 150 में से दो चार को सहन करना पड़ा है। तो क्या है, अभी तो कम है, शुरू शुरू में बहुत थे। अभी तो क्या है, बाबा ने युक्तियां भी बताई है और योग से शक्ति मिलती है। मेन बात ये है, योग द्वारा हमें शक्ति लेकर अपने सब विकारों पर विजय पानी है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ काम विकार नहीं, क्रोध को अभी हमें शांति में बदलना है, अहंकार को नम्रता में बदलना है, लोभ को संतुष्टता में बदलना है। यदि हम संतुष्ट है, लोभ नहीं होगा। मोह को शुद्ध प्रेम में बदलना है और अहंकार को नम्रता और देहभान को देही अभिमानी, ईर्ष्या को प्रेम और स्वमान में। जितना हमारे में स्वमान होगा ना, ईर्ष्या नहीं रहेंगी। तो ईर्ष्या को स्वमान में बदलना है और वैर को मैत्री भाव में बदलना है। तो अलबेलेपन को केयरफुल रह कर करना है, अलबेलापन नहीं रखना है। और आलस्य को हमें उमंग उत्साह में बदलना है। तो जितना हम गुणों में धारण करते जाएंगे तो अवगुण या विकार ऑटोमेटिक छूटते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने पर सूक्ष्म अटेंशन रखो। बड़े बड़े तो विकार है ही, परंतु सूक्ष्म विकार भी ना रहें, छोटे भी सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये नहीं समझना कि चलो हमने काम विकार तो जीत लिया, चलो हम ब्रह्मचारी तो रहते हैं ना। नहीं, हमारे में जरा भी ईर्ष्या का अंश ना हो, किसी के प्रति वैर का अंश ना हो, किसी के प्रति घृणा का भाव ना हो, ये ध्यान रखना है। हरेक के प्रति हमारे लिए और हमारे हरेक के लिए हमारे में ये है कि हमें बहुत प्रेम से देखना है, शुभ भावना रखनी है कि ये बदल जाएगा। जैसे देखो, कोई पागल होता है तो हम क्या करते हैं, पागल हमारे ऊपर हंसेगा ना। पागल सारा दिन हंसता है, कारण हो ना हो ठीक, परंतु हंसेगा। तो हमें क्या करना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, पर दया आनी चाहिए कि ये देखो बेचारा सेंसिबल नहीं है। इसी रीत से ये जिनके संस्कार विकारी है, हमें उसके प्रति घृणा वैर गुस्सा ना हो, परंतु शुभ भावना हो कि ये बेचारा देखो संस्कारों से बेचारा कितना अपने संस्कार से खुद ही परेशान होते हैं ना, विकारी है खुश रहते हैं क्या? किसी के मन में वैर भार होगा खुशी रहेंगी क्या? गुस्सा होगा खुशी रहेंगी क्या? तो वो अपने से ही खुश नहीं है। तो हमें क्या करना है, रहम भाव हो और शुभ भावना हो कि ये बदल जाए। तो इसी रीत से देखना है हमें बाबा के, जो बाबा हमारे से चाहते हैं, बाबा से भक्ति में हमने बहुत कुछ मांगा और अभी बाबा बिना मांगे हमें सब कुछ देखता है। कितनी कृपा की है ना भगवान ने हमारे ऊपर, बिना मांगे सब कुछ देता है। तो हमें क्या करना है, बाबा से खजाना लेते जाओ, लूटते जाओ। आज भी सवेरे कहा, जितना आप औरों को खजाना लुटाते जाएंगे, उनका भाग्य बनाते जाएंगे, इतना आपका भाग्य भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें बाबा से सब कुछ लेना है, मांगना नहीं है। बिना मांगे सिर्फ याद द्वारा शक्तियां ले ली जानी है और बांटते जाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा भाग्य और भी बनता जाएगा और इससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। क्योंकि श्रीमत है श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत को जितना फॉलो करेंगे हम भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। क्योंकि हमको नर से नारायण बनना है, ये बुद्धि में लक्ष्य हमारा पक्का है कि हमको नर से नारायण बनना है। तो इसलिए नर से नारायण बनने के लिए ये हमारे पास बाबा ने सहज मार्ग बताया है। हमारा ज्ञान का मार्ग सहज है, ज्ञान सहज, योग सहज, मार्ग सहज। सिर्फ हमें अपने पर टेंशन रखना है कि हमारी पुरानी चाल चलन ना हो, पुराने स्वभाव संस्कार को हम वश न हो जाए। तो चेकिंग जरूरी है, अटेंशन जरूरी है, अपना चार्ट देखते रहना है, औरों को नहीं देखना है। पहले हम क्या करते थे, हमारी नजर औरों तक ही जाती थी, परंतु अभी बाबा कहते हैं ज्ञान रूपी दर्पण में अपने आप को देखो। बाबा ने हमें ज्ञान रूपी दर्पण दिया है, उसमें अपने आप को चेक करना है कि कहां तक हमने बाबा की ये सब बातें जीवन में लाई है। क्योंकि बाबा का एक एक महावाक्य बहुत ही महत्व का है, एक एक शिक्षा मेरे लिए है। ऐसे नहीं कि औरों को सुनाकर हम कहें कि हाँ बाबा तो ऐसे कहते हैं, ना ऐसे करो, तो उनसे अपेक्षा नहीं रखो। खुद एग्जाम्पल बनकर औरों को करके दिखाओ, बोल के नहीं सिखाना है। क्योंकि आजकल ये जमाना नहीं है कि बोल करके किसी को सुधारो, अपने एग्जाम्पल से औरों को हमें आगे बढ़ाना है। तो जितना जितना अपना अपने पर अटेंशन रखेंगे और अपने को आगे बढ़ाएंगे, अपने को तो फायदा है पर हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उन्हों को भी हम फायदा दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें जो भी बताया है, सफेद वस्त्र पहनना तो सहज ही है, परंतु उसके साथ साथ आत्मा को, मन को, बुद्धि को भी सफेद और स्वच्छ बनाना है, जिससे कि आत्मा के ऊपर कोई विकारों का दाग ना रहें, और दाग हो तो भी जो जैसे सफेद कपड़े में दाग क्या है फौरन देखने में आता है। इसी रीत से जितना हम स्वच्छ बुद्धि बनेंगे तो क्या है कि हम देख सकेंगे कि हमारे में कौन सा सूक्ष्म विकार है। ओम शांति।